अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुझसे इस्लाम के सेक्स और यौन व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण पर थोड़ा बात करने को कहा गया है और क्यों कुछ लोग मानते हैं कि इस्लाम ऐसा धर्म है जो इन बातों पर बहुत नियंत्रण रखना चाहता है। यह मानव यौनिकता को सीमित करने के बारे में है। वास्तव में इस्लाम मानव यौन अनुभव को भगवान द्वारा मानवता को दिए गए सबसे बड़े उपहारों में से एक मानता है। मध्यकालीन ईसाई धर्म में कुछ ईसाई धर्म शास्त्रियों ने वास्तव में सेक्स को घृणित माना है। यह एक ऐसा पाप है जिसे केवल मानव प्रजाति के प्रजनन के लिए किया जाना चाहिए। इस्लाम का ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं था। यह वास्तव में मानव होने का एक बहुत स्वस्थ हिस्सा है। यह मानव होने का एक बहुत सामान्य हिस्सा है। अगर हम अंतरंगता और संभोग में शामिल नहीं होते तो हम मानव नहीं होते। लेकिन सच यह है कि हर एक इच्छा की तरह, हर एक भावना की तरह इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। खाना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन अगर हम हमेशा खाना खाने लगें या हानिकारक चीज़ें खाने लगें तो इससे शरीर को नुकसान होगा। बेशक खाने का विचार या इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन इसे इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि यह समाज के लिए सहायक हो। सेक्स और यौनिकता मानव जीवन का एक स्वाभाविक पहलू है और वास्तव में भगवान ने हमारे भीतर अंतरंगता की लालसा, इच्छा और क्षमता का निर्माण किया है और उसने इसे मानवता के महान अनुभवों में से एक बना दिया। लेकिन उसने हमें बताया है कि सच्चाई से खोजने का एकमात्र तरीका इस क्रिया में जो व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए लाभकारी है, संतोष पाने के लिए यौनिकता को सीमित करना आवश्यक है और अंतरंगता को विवाह के दायरे में सीमित करना चाहिए। इसलिए इस्लाम विवाह के भीतर स्वस्थ यौनिकता को प्रोत्साहित करता है और हमारे नबी मोहम्मद उन पर शांति हो ने हमें विवाह करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मैं युवाओं को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि वह नहीं चाहते कि हम इन इच्छाओं को विवाह के बाहर पूरा करें। असल बात यह है कि अल्लाह हमें बताते हैं कि यह दरअसल एक नेकी का काम है। दूसरे शब्दों में हमें अपने धर्म के अनुसार इनाम मिलता है, यहाँ तक कि रोमांटिक होने पर भी। हमें अपने साथी के साथ निकटता के लिए पुरस्कार मिलता है। हालांकि यदि हम यौन संबंध में संलग्न होते हैं, यदि हम विवाह के बाहर निकटता में संलग्न होते हैं तो यह आत्म के लिए हानिकारक है, यह परिवार के लिए हानिकारक है, यह समाज के लिए भी हानिकारक है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि एक विश्वास के रूप में और एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में हमें इसके साथ खेलना नहीं चाहिए। हमें आकस्मिक यौन संबंध में संलग्न नहीं होना चाहिए। यह उस प्राकृतिक तरीके के खिलाफ है जिस तरह से भगवान ने हमें बनाया है। विवाह का उद्देश्य, विवाह का एक प्रमुख उद्देश्य केवल प्रजनन नहीं है, इस्लाम में यह मनोरंजन भी है। यह मजेदार और खेल में भी संलग्न होना है। यह अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताना है। यह मानव होने का एक हिस्सा है। इसलिए सीधे शब्दों में कहें, इस्लाम यौन संबंध को नियंत्रित करता है क्योंकि अनियंत्रित यौन संबंध व्यक्तिगत हानियों का कारण बनते हैं, पारिवारिक और सामाजिक हानियों की ओर। हम मानते हैं कि ईश्वर चाहता था कि हम उसके कानूनों का पालन करें ताकि एक उत्तम समाज का निर्माण हो सके। और जब हम यौन संबंधों को नियंत्रित करते हैं और इसे विवाह के दायरे में सीमित करते हैं, यह तब होता है और यही एकमात्र समय है जब यह मानव भावना सबसे उत्पादक और उपयोगी तरीके से प्रकट होती है।